أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں ایک بار پھر آپ کے سمکش حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے بھاگ میں وضو کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور ہماری بات چیت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی تھی کہ وضو میں کسی انگ کو کتنی بار دھویا جائے، شریر کے انگ پر کتنی بار پانی ڈالا جائے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو میں کسی بھی انگ کو دھونے کے لیے ایک بار پانی ڈالنا جائز ہے، ایک بار واجب ہے، دوسری بار جائز ہے، اور تیسری بار حرام ہے۔ اور ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ پانی ڈالنے کا ارتھ پانی کا پڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک بار اس انگ کا پوری طریقے سے دھل جانا ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی انگ کو کئی بار پانی ڈال کے پوری طرح دھویا جا رہا ہے تو وہ ایک بار دھونا ہی کہلایا جائے گا۔ اس میں ایک آخری مسئلہ، ایک انتیم مسئلہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، اس کے بعد ہم مسئلے کی بحث میں آ جائیں گے اور اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ اگر تیسری بار جب پانی ڈالا جا رہا ہے تو تیسری بار پانی ڈالنا حرام ہے کسی بھی شریر کے انگ پر جس کو وضو میں دھویا جانا آوشیک ہے۔ اگر انسان تیسری بار پانی ڈالتا ہے تو پانی ڈالنا حرام ہے، اور جہاں یہ ایک جگہ پر حرام کہتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان تیسری بار پانی ڈال رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس نے حرام کار انجام دیا ہے بلکہ اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کب؟ جیسے کہ وہ تیسری بار کسی ایسے انگ پہ پانی ڈال رہا ہے جس کے بعد اس کو مسح کرنا ہے، تو اگر مسح تیسری بار کے پانی سے کیا جا رہا ہے تو وہ مسح صحیح نہیں ہوگا اور اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آوشیک یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ وضو کو آرام سے انجام دے۔ تو یہ دھلنے والی چیزوں کے بارے میں بات تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ دھلنے میں پہلے چہرہ ہوتا ہے، پھر داہنا ہاتھ ہو جاتا ہے اور بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بحث آتی ہے، اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے مسح کی بات کہ کس انگ پہ کس پرکار مسح کیا جائے۔ تو مسح کرنے میں سب سے پہلا مسح جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سر کا مسح۔ اس کے بارے میں یہ پرشن اٹھتا ہے کہ سر کا ٹھیک ہے مسح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتنا کیا جائے، کہاں سے کیا جائے، کس استھان سے آرام کیا جائے، کہاں پر سماپت کیا جائے، اس کے بارے میں بہت سی بات چیت ہیں جن کو ہم اس بحث میں اسپشٹ کریں گے، اور ہم یہاں پر اس کے بارے میں مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو جب سر کا مسح، ایک ویکتی وضو کے درمیان سر کا مسح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آوشیک یہ ہے کہ سر کے اگلے بھاگ پر مسح کرے۔ کتنا مسح کرے، کتنا بھی مسح کرے، کتنا چھوٹا چھوٹا مسح کر سکتا ہے، بس یہ کہا جائے کہ ہاں اس نے مسح کیا ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ تین انگلیوں کی چوڑائی اور ایک انگلی کی لمبائی پر اس کا مسح ہونا چاہیے۔ یہ سر کے مسح میں یہاں سے شروع کرے گا، یوں ختم سماپت کرے گا۔ اسی پرکار یہ مسح آوشیک نہیں ہے کہ صرف داہنے ہاتھ سے ہی انجام دیا جائے، نہیں، بلکہ انسان بائیں ہاتھ سے بھی انجام دے، مثلا یوں کرے، یوں کر کے اس کو جو ہے پورا مسح اپنا کر لے۔ اور اسی پرکار یہ بھی مسح کرنے میں آوشیک نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو بال کی کھال تک یا سر کی کھال تک پہنچائے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ صرف سر کے بالوں کے اوپر اس نے اگر ہاتھ پھرا لیا ہے تو اس کا سر کا مسح صحیح کہا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے سر کے بال بہت بڑے نہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اس کے بالوں میں کنگھا کیا جائے تو اس کے بال چہرے تک نہ جاتے ہوں۔ اگر کسی ویکتی کے بال بہت بڑے ہیں کہ کنگھا کرتے سمے اس کے بال چہرے کے تک آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آوشیک یہ ہے کہ جس ٹائم جس سمے وہ مسح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آوشیک یہ ہے کہ بالوں کو الگ کرے، بالوں کو الگ کرنے کے بعد کھال کے اوپر، سر کی کھال کے اوپر مسح کرے، اور اگر پھر بھی سر کی کھال تک نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم سر کی جڑوں پر مسح کرنا آوشیک ہے۔ इसी तरह से यानी बाल के अगले हिस्से के ऊपर भी वो कर सकता है मसा। तो ये सर के मसे के बारे में बातचीत हुई। और दूसरी बात आती है पैर का मसा। सर के मसे के बाद आता है पैर के मसे की बात। तो इसी वही प्रश्न जो सर के मसे के बारे में पैदा होते हैं, वही प्रश्न पैर के मसे के बारे में भी निकलते हैं कि जैसे कि कहाँ से आरंभ किया जाए, कहाँ पर समाप्त किया जाए, कितना मसा किया जाए। तो पैर के मसे में जो एक चीज़ है वो ये है कि उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से आरंभ किया जाए और वो हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, जैसे पैर यहाँ से आरंभ हुआ है, यहाँ से पैर की उंगली ये शुरू हुआ, तो ये हिस्सा जो उभरा हुआ है तो यहाँ से जब मसा कर रहा है तो यहाँ से आरंभ करे और यहाँ तक मसा करे, पैरों की उंगलियाँ से उभरे हुए स्थान तक। ये कितना करे, एक उंगली से भी कर सकता है मसा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर ये पैर है तो उसके पूरे भाग को मसा करे, यानी यूँ यहाँ से आरंभ करें, यूँ पूरा पूरा का पूरा समाप्त करें यहाँ पर। और इसी प्रकार पैरों का मसा करते वक्त ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले आवश्यक यह है कि दाहिने पैर का मसा किया जाए, उसके बाद बाएं पैर का। हाँ, लेकिन इसमें ये आवश्यक नहीं है कि किस हाथ से किस पैर का मसा किया जाए। क्या मतलब, यानी दाहिने हाथ से बाएं पैर का मसा कर सकता है, बाएं पैर से दाहिने पैर का भी मसा कर सकता है। तो ये वो बातें थी जो हमने वजू में धुलने वाले अंगों के बारे में बताई और मसे के बारे में। ये यहाँ पर सारे मसले समाप्त हो जाते। वो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मसा करते वक्त, चाहे वो सर का मसा हो चाहे पैर का मसा हो, उनका ध्यान रखना एक मुकल्लफ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वो मसले क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इंसान जब मसा करने के लिए अपना हाथ मसे वाले स्थान पर रख रहा है, चाहे वो सर का मसा हो चाहे पैर का मसा हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हाथ रखे और हाथ को यूं हिलाए। यानी जैसे अगर सर का रख रहा है तो यूं रखे और यूं हाथ खींचे, यूं नहीं कि यूं हाथ रखा यूं, यानी सर या पैर ना खींचे बल्कि उस हाथ को खींचे, उस हाथ को हिलाए। हाँ, ये और बात होती है अगर कोई इंसान मसा करते वक्त हाथ को खींचा है, थोड़ा सा सर हिल गया है, थोड़ा सा पैर हिल गया, तो इसमें कोई इश्काल नहीं, इसमें कोई आशंका नहीं, वो वजू सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बात समय, कभी कभी ऐसा होता है ख़ास तौर से उस वक्त जब जो है गर्मी बहुत अधिक हो, कि इंसान मसा करने के लिए, जब तक मसा करने की नौबत आती है हाथ का पानी सूख चुका है, तो ऐसे समय पर क्या करे? क्या वो नल जो सामने लगा हुआ उससे पानी ले ले, या उस लोटे से पानी ले ले, या उस घड़े से पानी ले ले, क्या करे? तो ऐसे समय के लिए आवश्यक ये है कि जब इंसान के हाथों में नमी ख़त्म हो गई हो, इंसान के हाथों से पानी समाप्त हो गया, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पानी उन्हीं वुजू के अंगों से ले जो उसके अंगों में है, अलग से पानी नहीं ले सकता। अगर अलग से पानी लेकर वो मसा कर रहा है तो उसका वुजू बेकार है, उसका वुजू बातिल हो जाएगा। तो पानी कहाँ से ले? अब पानी तो समाप्त हो गया, तो वो लोग जो दाढ़ी बड़ी बड़ी रखते हैं उनको यहीं पर फ़ायदा समझ में आता है। और ये भी ज़रूर आवश्यक ये है कि जिस टाइम उंगलियों में, जिस समय मसा करना चाह रहा है, उसकी उंगलियों में इतना पानी हो, इतनी नमी हो कि उनके ज़रिए मसा किया जा सकता हो। यानी क्या मतलब? यानी ये कि जब वो सर या पैर के ऊपर मसा कर रहा हो तो उसका मसा स्पष्ट हो, उसके पैरों को महसूस हो, अपना प्रभाव छोड़े वो नमी उन पर। अगर नमी प्रभाव नहीं छोड़ रही तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पानी समाप्त हो गया है, पहले वाले आज़ा से पानी लिया जाए। और एक और मसला यहीं पर होता है कि जिन स्थानों पर मसा करना है, धुले जाने वालों में ये मसला नहीं है, लेकिन वो स्थान जिन पर मसा करना है जैसे कि सर या पैर, उनका सूखा होना आवश्यक है। यानी क्या? यानी अगर इंसान कोई नहा कर आया, उसने सर भिगो रखा है और वजू करने के लिए उसने पूरे हाथ सर धो लिया, हाथ धो लिया, दाहिना हाथ धो लिया, बायां हाथ धो लिया, अब चाहता है कि सर का मसा करे, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि सर को सुखाए या इतनी देर रुके कि सर सूख जाए, उसके बाद जो है उसके ऊपर मसा करे। हाँ, बिल्कुल सूखा होना आवश्यक नहीं, बल्कि इतना, अगर इतनी कम नमी रह गई हो कि जब वो इंसान अपना हाथ को सर के ऊपर फिरा रहा हो तो उसका प्रभाव उसके ऊपर रह जाए, अगर प्रभाव रह जाता है तो इसी को मसा करना कहा जाएगा। और इसी प्रकार आवश्यक ये है कि अंतिम मसला, इसको सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बयान कर दें, कि जब इंसान मसा कर रहा है तो हाथ और उस मसे वाले हिस्से के बीच में कोई चीज़ रुकावट ना हो। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सर का मसा कर रहा है तो सर के ऊपर टोपी लगी हुई ना हो, या तेल लगा हुआ ना हो, इस तरह की चीज़ें, या पैर का मसा कर रहा है तो मोज़े पहने हुए ना हो, या कोई चिकनाई लगाए हुए ना हो। अगर ये सब चीज़ें हैं तो पहले उनको हटाए, हटाने के बाद उनके ऊपर मसा करे। तो ये वो मसले थे जो वज़ू से संबंधित थे, जो हमने आके बारे में बयान किया। तो वज़ू में कुछ चीज़ें धुली जाती हैं, कुछ चीज़ें मसा की जाती हैं। अब अगर हम इनको आपको करके दिखाना चाहें तो इस प्रकार होगा, यानी सबसे पहले आदमी वज़ू करे, वज़ू करने के बाद पानी डाले, यहाँ से पानी आराम करे, यहाँ से शुरू करे और यहाँ तक, ये लंबाई में हुआ। चौड़ाई में क्या, चौड़ाई में इसके अंगूठे से लेके बीच की उंगली के दरमियान जितना भाग आता है वो इंसान के लिए वाजिब है, वहाँ तक पानी पहुँचे। यानी क्या मतलब, यूँ करेगा, यूँ यूँ आराम करेगा, यूँ, तो यहाँ तक अगर आ रहा है तो यहाँ तक आवश्यक है पानी पहुँचे। हाँ, अगर इधर पहुँचाना चाहे तो मुस्तैब है कि पहुँचा दे, लेकिन आवश्यक ये है कि यहाँ तक कम से कम पानी अवश्य पहुँचे। अगर इनके दरमियान, इनके बीच में कोई भाग सूखा रह जाता है तो उसके लिए वहाँ पर पानी पहुँचाना आवश्यक है। इसी तरह से अगर दाहिना हाथ करना चाहता है तो पहले कोहनी से शुरू करे, कोहनी से उसका जो है धुलना आरंभ होगा और उंगलियों के वहाँ तक, उंगलियों के सिरे पर समाप्त होगा। यानी क्या मतलब, पानी यहाँ से डालना शुरू कर, यूँ शुरू करेगा, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह ये दाहिना हाथ हुआ, यहाँ से यहाँ तक शुरू करेगा। इसी तरह से बायां हाथ, यहाँ से कोहनी से आरंभ करेगा और उंगलियों के सिरे तक। फिर सर के मसे की बात आती है, सर के मसे हमने बताया कि आप यूँ शुरू करेगा, तीन उंगलियाँ मुस्तहब ये है कि तीन उंगलियाँ चौड़ाई में हो, एक उंगली कम से कम लंबाई में, यानी यूँ आराम करें यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से पैर का मसा, पैर का मसा अगर ये ऊंचाई है तो यूँ शुरू करेगा, यहाँ पर समाप्त करेगा, बाएँ पैर को यूँ शुरू करेगा, यहाँ पर समाप्त करेगा। तो ये वज़ू से संबंधित वो मसले थे जो वज़ूए तरतीबी में होते हैं। उसके बाद मसला आता है, एक वज़ू होता है वज़ू इरतमासी। अब शायद हमारा कोई भाई पूछे वज़ू इरतमासी क्या है। जिस प्रकार गुस्ल इरतमासी होता है उसी प्रकार वज़ू इरतमासी भी होता है। यानी क्या मतलब, यानी मतलब यह है कि इंसान पहले नियत करता है, नियत करने के बाद अपने उस शरीर के उस भाग को जो वज़ू करने में धुला जाना आवश्यक है उसको पानी में डुबोता है। इस तरह से वज़ू इरतमासी किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक इतना बड़ा हौज़ या इतना बड़ा कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी है। अब अगर इंसान वज़ू इरतमासी करना चाहता है तो पहले वो नियत करे, नियत करने के बाद अपने चेहरे को उस पानी में डुबो ले। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो क्या, चूँकि वज़ू करते वक्त तरतीब शर्त है, तरतीब का होना आवश्यक है, अगर तरतीब टूट जाए तो वज़ू टूट जाता है, इसलिए वज़ू इरतमासी में भी शर्त ये है कि जिस समय इंसान अपने शरीर के उस अंग को पानी में डुबो रहा है उस तरतीब का ख्याल रखा जाए। यानी क्या मतलब, यानी मतलब ये कि अगर इंसान चेहरे को वज़ू की नियत करने के बाद पानी के अंदर डाल रहा है तो पहले इस तरफ से शुरू करे, अगर ये पानी का वो बर्तन है तो यूँ शुरू करे, इधर से डाले और इधर से पूरा निकाले, इस तरह से वज़ू इरतमासी को। ऐसे ही हाथों के मामले में पहले कोहनी की तरफ से डाले और उसके बाद उंगलियों की तरफ से यूँ हाथ निकाले, तो ये होगा वज़ू इरतमासी का तरीका। हाँ, अगर कोई इंसान पहले से जो है हाथ या चेहरा पानी के अंदर डाले हुए था, वज़ू की नियत भी नहीं थी, अब पानी के अंदर डाले डाले उसने सोचा हम वज़ू भी कर लें, नमाज का समय हो रहा है या कुरान पढ़ना है, वज़ू कर लेते हैं, तो अगर इंसान ऐसे समय में वज़ू करता है कि पानी के अंदर पहले से चेहरा या हाथ था, अब अगर वो वज़ू की नियत से करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वहीं पर नियत कर ले, और जिस समय वो पानी से चेहरे या हाथ को निकाल रहा है ऊपर, उस टाइम अपनी तरतीब का ध्यान रखें। यानी क्या मतलब, यानी अगर चेहरा पहले से पानी के अंदर था तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी से निकालते समय चेहरे को ऊपर की तरफ से निकाले, यानी क्या, यानी पेशानी की तरफ से निकाले। अगर हाथ पानी के अंदर पहले से था तो हाथ को निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि हाथ कोहनी की तरफ से निकाले जाएँ पानी के अंदर से। तो ये गुस्ल इज्तिमाई संबंधित कुछ मसले थे। इसमें कुछ और मसले भी हैं, उसको हम आगे बयान करेंगे और फिर उसी के बाद वज़ू जबीरा और तयम्मुम के बारे में बहस करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।